वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदना नंदगोपाल गोविंदा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपी काकांता राधा का तप्ता पंचम गोरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शुभाशी गौर हरे कृष्ण हरे राम। आज हनुमान जयंती है, लेकिन मैं हनुमान जी महाराज के विषय हम उनकी महिमा करें उससे पहले हमें शब्द हनुमान का अर्थ समझना पड़ेगा। यदि हमारे जीवन में शब्द हनुमान का अर्थ उतर गया, एक बात हम सोचिए कि हम जो भी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और आध्यात्मिक पद पर अग्रसर है, चाहे किसी की प्रगति कम है या ज्यादा है, स्पीड कम है ज्यादा, लेकिन चल रहे हैं उसी पथ पे, तो उस पथ पे तो चल पड़े हैं, लेकिन उस पथ पे चलते चलते बहुत सारी रुकावटें भी आ सकती है। अब कृष्ण ने क्या कहा, क्योंकि मैं कोई भी चर्चा करूं बिना कृष्ण के अधूरी है, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे भगवान शिव की हो, चाहे मां दुर्गा की हो, चाहे संसार की हो, आपकी या मेरी हो, बिना कृष्ण के अधूरी है। क्योंकि मैं किसी के लिए भी बोलूं, बोलते 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 न जाने कब कृष्ण आ जाते हैं, मुझे भी नहीं पता पड़ता, क्योंकि यहां पे आके ऐसे विराजे जैसे उनका राज है, कथा में आके विराज जाते हैं, और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि हम जैसे अधम जीव जो पूरी तरह से संसार में गहराई तक डूबे हुए हैं, ठाकुर जी ने अपना नाम अपनी महिमा सुनाने और सुनने का सुअवसर दिया। तो कृष्ण कहते हैं तेषाम सतत युक्तना। अब जैसे हम चल रहे कोई रुकावट आ गई तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, तो अगर गाड़ी रुक गई तो सतत तो नहीं हुआ, फिर ब्रेक लग गए। और हमें अपने जीवन में जो मेरे हरि की ओर चल पड़े हैं, मेरे हरि की ओर चल पड़े हैं, ये यात्रा अवरुद्ध होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। अब सतत होगी तो रुकावटें आएंगी। अब इन रुकावटों को यदि आप पार कर, मेरे बच्चों सुन लो, यदि इन रुकावटों को हमें पार करके अपनी मंजिल की ओर सतत रहना है, तो हनुमान जी महाराज के जीवन चरित्र से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, रास्ते की वो मंजिल पे पहुंच चुके हैं। रुकावटें आएंगी, लेकिन यदि हम उस मंजिल तक पहुंचना चाहते तो क्या करें, और वो हमें हनुमान जी महाराज से सीखना है। पहले आइए हम शब्द हनुमान के विषय चर्चा करें। जय बजरंग बली। याद रखना, हनुमान जी महाराज बंदर नहीं है तो वानर है, वानर, मंकी मत समझना उनको। तो हनुमान शब्द हनु, शब्द हनु हनन से निकला है, शब्द हनु हनन से निकला है। हनन का मतलब है नाश करना, खंडन करना, तोड़ देना, समाप्त कर देना, नाश कर देना। मान मतलब अपना अभिमान, अपना मान का, जो व्यक्ति अपने मान सम्मान अभिमान का नाश कर दे, हनन कर दे, वो हनुमान। मान का हनन करो। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने मान का हनन नहीं कर सकते, जबकि चैतन्य महाप्रभु यही बात कहते, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान, मान का हनन न देना। कीर्तन्या सदा हरि कीर्तन करने के लिए ये लक्षण है। एक बात याद रखो कि हम अकेले नहीं है इस भौतिक संसार में, क्योंकि हम सब घर गृहस्थी के लोग हैं, हम सब फैमिली है, परिवार है, दोस्त है, साथी है, रिश्तेदार है। और जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति हर रोज आपके अनुकूल ही चले, क्योंकि आप खुद हर रोज किसी के अनुकूल नहीं चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप चले ही। तो जब हम हर रोज किसी के अनुकूल नहीं चलते हैं, किसी ना किसी को तो होता ही है, तो जाहिरी बात है वो भी तो इंसान है, फिर वो भी कोई ना कोई हमारे अनुकूल नहीं चलेगा। अब वो हमारे अनुकूल नहीं चलेगा या हम उनके अनुकूल नहीं चलेगा तो कलह होगी, थोड़ी बहुत तो होगी, उसमें हमारा मूड खराब होगा। जब मूड खराब हुआ तो भजन भी गया, सत्संग भी गई, मेरे गुरु महाराज की कृपा से, मेरे हरि की कृपा से मैंने अपने मूड के कारण कभी सत्संग नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये भी क्या है, माया है। ये भी तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी तो गुणमयी, मम माया गुणमयी, ये माया खुद तीन गुणों से मिलके बनी। तो यहां तक कि सतोगुण खुद भी माया ही तो है, रजोगुण भी माया और तमोगुण भी। और अगर आपका मूड खराब है, समझ लेना माया ने आप उस दिन आक्रमण किया। अब मूड खराब है तब तक तो मामला सही है, लेकिन उस मूड खराब की वजह से आपकी साधना पे कोई असर पड़ा, आपकी सत्संग या आपकी सेवा पे कोई असर पड़ा, तो समझ लेना माया आई लेकिन रुकी नहीं, उसने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण भी किया तब तक भी मामला ठीक है, लेकिन उस आक्रमण में उस दिन आप पराजित हो गए और वो सफल हो गई।
और याद रखो, अगर हमको हरि से,
क्या बोला,
हमको हरि से, हरिजन से और हरि कथा से प्रेम है, तो फिर कोई चीज भी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। हमको यदि हरि सेवा से, हरिजन सेवा से और हरि कथा की सेवा से लगाव है, प्रेम है, तो ये कोई भी रुकावटें हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। चूंकि संत कबीर क्या कहते हैं, मात पिता सूत स्त्री, क्या बोला, और बंधु कानी, संत मिलन को जाइए तो ए अटकावे आनी, आनी मतलब रुकावटें खड़ी करते हैं, ये सब रुकावटें खड़ी कर देते हैं। संत मिलन को जाइए तो ये अटकावे आनी, ये रुकावटें करते हैं। मैं तो बार बार अपने आप से ही कहता हूं, रुक जाना नहीं तो कहीं हार गए, क्यों, कांटों पे चल के मिलेंगे साहिब। एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है, सुनिए बाबा, आज गम है तो क्या, वो दिन भी यही जरूर आएगा जब तेरा गम खुशी में बदल जाएगा। आज गम है तो क्या, वो दिन भी यही जरूर आएगा जब तेरा गम खुशी में बदल जाएगा। तो बात यह है कि अगर हमें हनुमान जी महाराज का जीवन देखना है और उनसे प्रेरणा लेनी है, तभी हम अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। इसलिए हनु मान, अपने मान का हनन करो। अगर किसी ने आपको बोल दिया है बुरा, एटलीस्ट उसकी शब्दों की वजह से आप इतना बुरा मत मानो कि आपका भजन छूट जाए उस दिन, इतना बुरा मत मानो कि आपकी सत्संग छूट जाए उस दिन, इतना बुरा मत मानो कि आपकी सेवा छूट जाए उस दिन। अगर ऐसा हुआ तो उस दिन माया का आक्रमण सफल हो गया, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका भाव सफल हो गया। दो चीजें हैं आपके सामने। अब देखिए हनुमान जी महाराज को देखिए, जय हनुमान। अब भगवान श्री राम मां जानकी को ढूंढने के लिए वन में चल पड़े। वन में चले, चलते चलते निकले सिर्फ कौन, राम और लक्ष्मण ही निकले। वन के वानरों ने जब देखा तो वो भी श्री राम के साथ चल पड़े। जामवान कौन था, रीछ के रूप में थे, वो भी चल पड़े। जामवान आगे जाके जामवती अपनी पुत्री को श्री हरि को समर्पण किया, मतलब जिसका था उसको दिया। ये मत सुना कि हमने मंदिर में कोई चढ़ावा चढ़ाया। क्या चढ़ावा चढ़ाया, अब किसी की शादी में जाकर आप सुबह को कि जरा 5,000 तो दे, बोला क्यों, बोले रात को तेरी शादी में देने, कैसा लगेगा उसको। अरे सुन 2,000 तो दे, क्यों, बोले रात को लिफाफे में तेरी शादी में तुझे देने, अजीब लगेगा ना। तो मांगते किससे, भगवान से, देता कौन है, फिर उसी को देते। ये कोई बुरी बात नहीं, नहीं तो अभी लोग ऐसी के पैसे भी नहीं देंगे, बोला उसी को दिया, उसी को दिया। देता वो है, लेकिन जब आप देते हो तो उसके दिए के साथ साथ आपका भाव आपका अपना होता है, भाव आपका अपना होता है। बाकी जो भी देते हो उसी का दिया हुआ उसको देते हो, लेकिन जब लेते हो, सुनो, जब लेते हो तो जो आपको देता है वो दिए हुए के साथ उसकी दया होती है। जब आप उसको देते हो तो उसके दिए हुए के साथ आपका भाव होता है। ये समझ लो। तो अब हनुमान जी महाराज और सारे वानर, हनुमान जी की पहली मुलाकात भी बड़ी अटपटी हुई थी, कभी समझाऊंगा अभी, आज आगे चलते अब चले। अब चलते 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 आज का जो स्थान है श्री रामेश्वरम हमारे तमिलनाडु में है, वहां तक भगवान श्री राम की सेना पहुंच गई। सोचो जरा भाव सोचो कि दो ही है राम और सारे वानर उनके साथ, सारे वानर उनके साथ। अब कल्पना करो, मेरा हरि वृंदावन चंद्र जब चलता है तो सारी गायें उनके साथ है, और जब श्री राम चलते हैं तो सारे वानर साथ। ऐसा क्यों? ये आज नहीं, बाद में बताऊंगा कि हर मेरे हरि की हर लीला में कोई ना कोई मर्म है, संदेश है, कोई ना कोई उपदेश। कभी बात करेंगे, क्यों? हरि कथा, हरि अनंत, और हमें कौन सी जल्दी है। तो सब चले कहां पर? रामेश्वरम चले। जय श्री राम। मैं अभी भी कुछ महीनों पहले ही दर्शन करके आया हूं। अब उस स्थान पे एक है धनुषकोडी, एक छोटा सा गांव है, उसके पास पड़ाव डाला क्योंकि सामने हिंद महासागर। आपको पता है वानरों को तैरना नहीं आता है, अब जाए कैसे? जामवान को भी तैरना नहीं आता, जाए कैसे? तब ऐसी योजना बनाई कि पहले जाके देख के आए कि माँ सीता लंका में है कि नहीं, देखे तो सोई, लेकिन जाए किसी, किसी को स्विमिंग आती नहीं, और आती भी होती इतने दूर डूब जाएगा कोई। तब हनुमान जी महाराज ने कहा यदि आप मुझे आज्ञा दो तो मैं माँ सीता को ढूंढ के लाऊं और फिर से आपकी सेवा में स्थापित करूं माँ सीता को। लेकिन अब क्या है कि लंका के मार्ग में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, और रावण ने उस जमाने में, भाई आज मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, एलन मस्क टाइप के लोग अपने घरों के आगे सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं, तो रावण भी कोई कम थोड़ी था, वो भी महाराजा था, तो उसने भी अपने रास्ते में क्या लगाई थी? सिक्योरिटी थी। और ये इनको पता चल गया कि भाई रास्ते में तो सिक्योरिटी है। अब वो सिक्योरिटी क्या थी अब समझो। अब हनुमान जी महाराज श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उड़े, जय श्री राम, उड़े। लेकिन उड़ते 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 रास्ते में सिक्योरिटी सिस्टम आया। अब एक सिक्योरिटी सिस्टम था कि एक था सोने का बहुत बड़ा पहाड़, उसको लांघना था। चलो हनुमान जी महाराज उसको किसी तरह से लांघ गए, छू के निकल गए आगे। मतलब इस सेवा में कोई प्रलोभन आ भी जाए तो उसको लांग जाना, वहीं उसको पकड़ के बैठ नहीं जाना है। तो हमारे जीवन में सोने के पहाड़ तो नहीं होंगे, लेकिन सोने जैसे लोग जरूर होंगे। सोने जैसे लोग भी होंगे, सोना जैसे भी होंगे, सोना ही है।
अगर हम वहां जाके स्टक हो गए, यू नो विच वर्ड, स्टक हो गए, क्योंकि वो क्या है, सोना, तो फिर आप वही स्टक ही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। आगे कौन है? लंका। लंका में कौन है? सीता। अब सीता यहां पर मात्र एक स्त्री नहीं है, मात्र एक स्त्री नहीं है, बल्कि सीधा मां सीता एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है, किसकी? साधना, भक्ति, सेवा, समर्पण, त्याग, प्रेम की। क्या है? समर्पण, साधना, भक्ति, प्रेम और त्याग, तपस्या की रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है। और ये सब लक्षणों को मिलाओ तो भक्ति बन जाती। अब भक्ति कहां पर है? लंका में। एक तरफ कौन है? श्री राम। अब उस भक्ति को श्री राम की सेवा में लगाना है, क्योंकि उस भक्ति का अपहरण कौन कर गया है? रावण। ऐसे ही इस कलयुग में भक्ति का अपहरण हो गया है, इसलिए लोगों के पास आज भक्ति नहीं है, लोगों के पास भक्ति नहीं। और इस भक्ति का अपहरण किसने किया? संसार की वो चकाचौंध जिसका नाम ग्लैमर है, उस चकाचौंध ने भक्ति को खींच लिया। अश्लीलता, वल्गैरिटी, ड्रग्स, मीट ईटिंग, जानवरों को मारना, उनको खा जाना, ये एक चकाचौंध है। और क्योंकि भारत के अधिकतर युवा बच्चे किस कल्चर को फॉलो करते हैं? वेस्ट को। हम भूल जाते हैं कि जिस कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं वो कल्चर आध्यात्मिक रूप से हमें डुबो देगा। क्योंकि याद रखना, सूरज रोज वेस्ट में डूबता है, ये मत भूलना तुम लोग। सूरज कहां डूबता है? वेस्ट में डूबता है, वेस्ट इंडियन, याद। तो जिस दिशा को हम फॉलो करते हैं वहां तो सूरज भी डूब जाता है भाई, तो आप कैसे नहीं डूबोगे? आप कैसे नहीं डूबोगे? सूर्य जैसा सूर्य जो महा चमकता है, पूरे विश्व को चमकाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो चल पड़ता किधर, वेस्ट की ओर, तो डूब जाता है। बाबा पॉइंट टू बी नोटेड, मानते हो इस बात को कि सूरज जैसा सूरज जो महान प्रकाशित और पूरे विश्व को प्रकाश करता, लेकिन यदि वो वेस्ट की तरफ चल पड़ा तो वो दिशा डुबाएगी। हमारे बच्चे, हमारे युवा भी वेस्ट की दिशा पे चल पड़े जहां डूबना ही है उसको, डूबना ही। कहां? संसार के साथ। वो भी हमको कहां लगता, क्या लगता, कहां डूबा? अब कभी सनसेट पॉइंट पे जाओ, मैं द्वारका में भी है सनसेट पॉइंट पता, और ऐसा लगता है सूरज समंदर में डूबा, समंदर में। तो हम भी भव सागर में डूबेंगे यदि वेस्ट की ओर चले तो। खबरदार, आज वेस्ट हमारा आइडियल बन चुका है।
جو کپڑے وہ پہنتے ہیں ایگزیکٹ وہی کپڑے ہم پہنتے ہیں اور پراؤڈ کرتے ہیں. جو بھوجن وہ کھاتے ہیں اس سے ملتا جلتا ہم کھاتے ہیں اور پراؤڈ کرتے ہیں. جو وہ پیتے ہیں وہی ہم پیتے ہیں اور خود کو پراؤڈ کرتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھنا اگر آپ ویسٹ کی طرف چل پڑے ہو تو وہ دشا تو ڈبائی. ارے ہاں مجھے بھی ابھی سمجھ آیا. جے ہنومان. اس لیے میرے بچوں ویسٹ کی اور چلو, لیکن اگر ویسٹ کی اور چلنا ہی ہے تو پربھوپاد کی طرح چلو. اگر چلنا ہے ویسٹ کی طرف تو شیلا پربھوپاد کی طرح چلو. جو ویسٹ میں جا کر بھی ڈوبے نہیں بلکہ ویسٹ میں جا کے اور چمکے. ویسٹ میں جا کے ڈوبنے کے بجائے ابھر گئے, اور نہ کیول خود ابھرے بلکہ ڈوبے ہوئے کو بھی ابھار دیا. یہ ہے مہاپرش جو کبھی ڈوبتے نہیں ہیں. اس لیے ہے سوریہ دیو آپ اس بات کا وشواس کیجیے اور اس بات کو جان لیجیے کہ یہ سوریہ نہیں شیلا پربھوپاد ہے. آپ تو ویسٹ میں جا کے ڈوبو گے, پربھوپاد ویسٹ میں گئے اور ڈوبے ہوئے کو نکالا پائے گا. بولو ہاں. یہ ہے مہاپرش کہ وہ جس دشا میں بھی جائے سوریہ تو خالی ایک دشا پہ جلتا ہے, مہاپرش تو دسوں دشاؤں میں جاتے ہیں. آج جہاں دیکھو پربھوپاد دکھتے ہیں, جہاں دیکھو پربھوپاد دکھتے ہیں, جہاں دیکھو پربھوپاد دکھتے ہیں. میں اور رادھے شام سنگاپور میں تھے تو بھائی میں تو ہوٹل میں بیٹھا تھا, رادھے شام کچھ لینے گئے, وہ سیوا کرتے بہت اچھی, بہت گریٹ مین ہے وہ. تو میں تو ہوٹل میں تھا جہاں رکا تھا. رادھے شام باہر گئے, مجھے بولا میں تو کھا کے آیا. میں نے کیا کھا کے آیا؟ بولا وہ بھکت لوگ پرساد بانٹ رہے تھے. یہ ہے پربھوپاد, ہر جگہ دکھتا ہے, اپنی موجودگی ہر جگہ ہے. سورج تو پھر بھی 12 گھنٹے کے بعد ڈوب جاتا ہے, مہاپرش تو رہتے جگت تک چمکتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جب تک سورج, ان لوگوں کا نام لیتے جو ڈوب جاتے ہیں, جب تک سورج چاند رہے گا شیلا پربھوپاد آپ کا نام رہے گا. یہ ہے مہاپرش لوگ, چمکتے ہیں اور ایسے چمکتے ہیں کہ اندھیرے کو آپ دیکھو, ہمارے جیون کو دیکھو. اوم اگیان تمران, ہم تمری اندھکار میں تھے, ہمارے گرو آئے اور ایسا پرکاش کر دیا کہ آج تک ہماری زندگی میں جو پرکاش ہوا ہے وہ پرکاش آج بھی ہے, اور ہماری زندگی کا وہ پرکاش پرکاش ہے, کیونکہ وہ سورج کبھی نہیں ڈوبے گا جو ہمارے گرو مہاراج نے ہمیں دیا ہے. اوم اگیان تمران دسیا گیان انجنا شاکایا, وہ پرکاش کبھی نہیں ڈوبے گا. تو اب ہنومان جی مہاراج, بات جیسے سونے کی چلی تھی, بات پھر ویسٹرن پہ چلی, بات نکلی ہے تو بڑی دور چلی جائے گی, بات نکلی ہے تو بڑی دور چلی جائے گی, جب دور چلی جائے گی تیری یاد بڑی آئے گی. بات نکلی ہے دور چلی جائے گی, یہ شعر بھی یہیں بن جاتے ہیں خود بخود. تو بات وہاں تک چلی, اب آگے ایک اور مصیبت, بڑی بھینکر مصیبت, جائے ہنومان. اور وہ تھی ایک راکشس نے جس کا نام تھا سورسا, پکا. تو وہ راکشس نے کی ایک پرابلم تھی, اور وہ ان کا سب سے بڑا سیکورٹی سسٹم تھا. کیا تھا سب سے بڑا سیکورٹی سسٹم؟ کہ جس کو لنکا میں جانا ہے اس کے جب تک منہ میں نہیں جائے گا وہ اس سیکورٹی کے بٹن کو यानी उसका मुंह उसका सिक्योरिटी बटन था कि वो सिस्टम अगर आपको उसका सिक्योरिटी सिस्टम फेल करके खोलना है वहां का रास्ता तो उसके मुंह में जाना पड़ेगा। अब वो भयंकर भयंकर और इतनी भयंकर कि बहुत। अब हनुमान जी महाराज को देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि लोगों को पूछो। अब चले, अब सामने वो राक्षसनी है सुरसा। अब सुरसा के हनुमान जी महाराज के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों था? कि जितने बड़े हनुमान जी महाराज उतना सुरसा ने मुख खोला। तो हनुमान जी ने सोचा कि और थोड़ा, क्योंकि उनके पास तो सारी सिद्धियां थी, और बड़े हुए तो सुरसा ने भी उतना मुंह खोला जैसे घर वाले शॉपिंग के टाइम पे खोलते हैं, खूब मुंह खोलते और बड़ा तो और मुंह खोला। और हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर बढ़ाया तो सुरसा ने और मुंह खोला। तब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये तो राक्षसनी, मैं किससे मथे लग रहा हूं? आप लोग भी कला सिखा रहा हूं, सीख जाना। ये तो राक्षसनी, मैं मथे किसके लग रहा हूं? क्यों, मैं जितना बड़ा हूंगा वो उतना मुंह खोलेगी तो नहीं, इसके सामने ये बहस करना कोई मतलब नहीं है। सुनो अब क्या हुआ। अब सुरसा ने, हनुमान जी महाराज ने जैसे अपना शरीर बड़ा किया, सुरसा ने भी बड़ा मुंह खोला। जैसे ही सुरसा ने बड़ा मुंह खोला, तुरंत हनुमान जी महाराज छोटे हो गए, और छोटे होके उसके मुंह में गए। वो तो पवन है, पवन है ना जी, पवन पवन पुत्र हनुमान है, वो तो पवन है। मुंह में गए, सुरसा ने कहा अपना काम हो गया, बंद करो अपना तिजोरी का मुंह। लेकिन उससे पहले कि सुरसा मुंह बंद करे, पवन की गति से गए और वापस आ गए, लॉक खुल गया। क्योंकि कंडीशन ये थी कि उसके मुंह से होके निकलना था और वो सिक्योरिटी सिस्टम खुलना था, जैसे हमारे मोबाइल में होता सिक्योरिटी सिस्टम कोई ना कोई, ऐसे हो गया। और हनुमान जी महाराज पहुंच गए कहां। अब ऐसे तो दो तीन थी, एक और भी चीजें थी, लंकनी थी। याद रखना, जब आपको पता पड़े कि सामने वाला इंसान राक्षसी बुद्धि का है तो वहां बड़े होने की कोशिश मत करना। बड़े होने की कोशिश मतलब समझो, आप बड़े शरीर से तो हो नहीं सकते, मतलब उससे कभी बहस मत करना। आप साधारण भाषा में उससे कभी मथाकुटी मत करना। क्यों नहीं करना? कि आप जितने अपने आप को बड़ा बनाओगे वो और मुंह खोलेंगे। क्यों? कि वो आपकी बड़ाई बर्दाश्त कर ही नहीं सकेंगे, उनके ईगो को हर्ट हो रहा। अर्थात ईगोस्टिक लोग खुद में एक बहुत बड़े राक्षस। जैसे जैसे ऐसे हुआ ने उसको सुरसा को, तो आप देखना एक ईगोस्टिक व्यक्ति के सामने आप जितना अपने आप को कुछ करोगे तो उनका ईगो हर्ट होगा और वाइड होंगे। आप ईगोस्टिक आदमी के सामने बोलोगे तो बहस करेंगे, कुछ मतलब नहीं, बहस आपके सामने चालू हो जाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं है, वो बात तो वही रह जाएंगी और चालू हो जाएंगे। ऐसे ईगोस्टिक पागल। मैं मुझे एक छोटी कथा आई, जय हनुमान। गांव में ये मेरे पिताजी सुनाते थे, मुझे बहुत सारी कथाएं बचपन में याद है जो मेरे पिताजी सुनाते थे। इगोइस्टिक लोग हैं ना, उनके सामने आप जितना बोलोगे उतने और उनका ईगो हर्ट होगा। तो इगोइस्टिक आदमी के सामने बोलोगे तो वो बहस करेंगे, जब आप उनके सामने बहस करोगे तो वो झगड़ा करेंगे, जब आप उनके सामने झगड़ा करोगे तो मारपीट पे आ जाएगा। हालांकि वो मारने के लायक नहीं होते, उनको धक्का मारो तो भी गिर जाएंगे, क्योंकि वो उनके ईगो ने उनको इतना अंदर से वीक कर दिया है कि कभी कभी तो गुस्सा आता है, उनके होंठ हिलते, उनकी बॉडी शेक करने लगती, नाक ऐसे 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 होने लगता है। इगोस्टिक लोग। तो एक गांव से बारात आई। अब बारात में तो आपको पता है 10-20 जितनी बड़ी फैमिली उतनी क्या होती थी, बैलगाड़ियां होती थी, उसमें बारात जाती थी। मेरे पिता कहते हम पिता हमारे गांव में भी ऐसे होता था, बारात किसमें जाती थी, बैलगाड़ी में 20-25 जितना बड़ा परिवार। अब चलते 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 एक संजोग से रात हो गई। अब जो बड़े बूढ़े लोग थे उन्होंने फैसला किया कि इस समय रात को जाना बारात का ठीक नहीं है, बीच में कोई डाकू, उस जमाने में डाकू होते थे, आपको नहीं पता, होते थे डाकू। परिवार वालों ने सोचा कि अब क्या करें, बारात को कहीं रुकवाए तो बीच में गांव आ गया, बोला चलो गांव आया, बारात को यहाँ रुकवाए। तो कहाँ रुकवाए, तो किसी ने बताया कि एक बुढ़िया रहती है, उसका बहुत बड़ा घर है, इतना बड़ा कि 50-60-70 आदमी आराम से सो सकते हैं, रुक सकते हैं। तो जो फैमिली के बड़े थे उस बुढ़िया के पास गए, सारे बैलगाड़ियां सब लोग गए, तो बुढ़िया को कहा कि माता जी हमारी बारात आई है, देखो दूल्हन भी है, दूल्हा भी है, बाराती भी है और साथ में ढोल बजाने वाले भी हैं, सारी है, बावर्ची है, रसोई है, सब है, रुकने दो। माता जी ने बोला रुके सर आंखों पे, लेकिन मेरी कंडीशन है। बोला क्या, बोला कोई सारी रात मुझसे झगड़ा करे। वाह कंडीशन, क्या कंडीशन, कोई मुझसे सारी रात झगड़ा करे। बारातियों ने सोचा सारे दिन के हम थके हुए और फिर इतनी खुशी खुशी से सब आ रहे हैं, नाचते गाते, और इससे कौन झगड़ा करे, और वो भी सारी रात झगड़ा करे। बोला रुकना है तो ये कंडीशन है, नहीं तो जाओ अब आगे दूर दूर तक कहीं दूसरा, और कुछ दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, आप करें क्या, अब कौन झगड़ा करे, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दुल्हन ने कहा मैं करूंगी, दुल्हन ने कहा मैं करूंगी। अरे भाई दुल्हन कैसे झगड़ा करी, बोला आप चिंता मत करो मैं करूंगी झगड़ा। दूल्हा तो वहीं बेहोश हुआ, दुल्हन ने कहा चिंता नहीं करो मैं झगड़ा करूंगी। अब देखो कैसे झगड़ा करती है। अब बुढ़िया पूरी की पूरी तमोगुणी थी, तमोगुणी मतलब महातमोगुणी, जैसे मैंने बताया राक्षसनी, इस तरह के लोग जो तमोगुणी है पूरे भरे बैठे होते हैं, सिर्फ उनको हल्की सी चिंगारी दो, देखो शोला शोला सा भड़का और दिल मेरा भड़का, ऐसे सामने वालों उधर शोला भड़कता है, सामने वालों का दिल धड़कता है। उस समय अगर बीपी चेक कराओ 200 के ऊपर होगा, ऐसी हलती। अब वो तो बहुत गुस्से में वाली थी, यानी थोड़ा करो तो लड़े। अब वो साथ में ढोल वाले भी थे, अब ढोल वाले बिल्कुल, वो जो ढोल बजाने वाला बिल्कुल कम अगल था, और दुल्हन उसको सुबह से नोट कर रही थी कि उसको इतना गुस्सा था ढोल वाले को इतना कि 3 ढोल फाड़ चुका था। दुल्हन सारा तमाशा देख रही थी। दुल्हन देखो कैसी थी, दुल्हन ने स्टार्ट किया, ये बुढ़िया ये ढोल वाला तेरी ऐसी की तैसी करेगा, क्या बोला, ये ढोल वाला तेरी। बुढ़िया ने कहा मैं ढोल वाले की ऐसी की तैसी ना कर दू। अब दुल्हन निकल गई ढोल वाला कर, तू मेरी ऐसी की तैसी करेगी, दोनों लग गए आपस में।
इधर से ढोल वाला, उधर से बुढ़िया, सारी रात झगड़ते रहे। दुल्हन तो आराम से सो गई। हेलो सुमिको, ऐसे कुछ लोग होते हैं राक्षस वृत्ति के, जिनसे बात करो तो बहस करेंगे, बहस करो तो झगड़ा करेंगे, झगड़ा करो तो मारपीट करेंगे। इसलिए समझदारी क्या, उनके सामने क्या बन जाओ, छोटे बन जाओ, तो उनका मुंह बंद। कलाकारी सीखो, सामने घमंडी है उनके सामने मुंह बंद कर रहे हैं तो छोटे बन जाओ। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ। देवानंद ने मधु हाँ मधुबाला ये जिंदगी समझा रहा हूं कि जब आपको पता पड़े सामने कोई राक्षसी विचार और स्वभाव का इंसान है, उसके सामने खुद को कभी बड़ा मत करना, उसके सामने तो छोटे बन जा, तभी उसका ईगो शांत हो जाए। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ, चलो मान जाओ बाबा, ठीक है। तब उसका मुंह, अब जैसे हनुमान जी महाराज छोटे हुए गए और उसका मुंह बंद हो गया। ये कलाकारी सीखना साहब, बच्चों समझे, हो गया। अब हनुमान जी पहुंच गए, कहा सारे सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ के चले गए, कहा लंका में, और मां सीता का पता लगाया, और अंत में मां सीता को राम जी की सेवा में स्थापित किया। ऐसे हमारी सीता, सीता मैंने कहा पहले ही सिंबल है, भक्ति भजन साधना सत्संग हरि कथा तपस्या, ये मां सीता रिप्रेजेंटेशन करती है, एक क्या बोलेंगे सिंबल है, और वो हमारी भक्ति अर्थात हमारी सीता का भी अपहरण हो चुका है। आज जो लोग भक्ति भजन सत्संग कथा कीर्तन नहीं कर रहे, समझ लो उनकी सीता का अर्थात उनकी साधना भक्ति का अपहरण हो गया। किसके हाथों? रावण। रावण काम का प्रतीक है, रावण क्रोध का प्रतीक है, रावण अहंकार का प्रतीक है, रावण ईर्ष्या और द्वेष का प्रतीक है। हालांकि रावण भी भक्ति करता था, लेकिन मुसीबत क्या है कि इस तरह के लोग जो इगोइस्टिक है, ईर्ष्यालु द्वेषी जलसी, वो करेंगे पूजा पाठ सब करेंगे, लेकिन मोग आशा मोग करुणा मोग ज्ञान विचेतस्य। रावण क्या करता था? अब भाई दो हाथों से तो भगवान शिव की, बाकी 18 हाथ उसके खाली थे, अब 18 हाथों से क्या करें? किसी संत के हवन में पानी डाल दे, कभी किसी की चोटी पकड़ के खींच ले। रावण किसी को उठाए तो वो तो ऐसे चूहे की दुम से किसी को उठाए, वो बेचारा ऐसा 18 हाथों से वो लोगों को तंग करता था और दो हाथों से वो साधना करता था। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनके हाथ में देखने का तो माला है, तो वो एक हाथ से मतलब दो हाथ तो उसके पूजा में, लेकिन याद रखना उसके 18 हाथ दूसरे जो अदृश्य है, दिखते नहीं है, लेकिन वो अदृश्य हाथों से वो लोगों को तंग करते रहते। किसी की पूजा बंद करा देंगे, किसी की साधना बंद करा देंगे, किसी की सेवा बंद करा देंगे, किसी का क्या बंद करा देंगे, किसी का क्या बंद करा देंगे, किसी का हवन, किसी की साधना, किसी की पूजा उठा के फेंक देंगे। क्यों? दो हाथ उनके दृश्य दिखते हैं, लेकिन 18 हाथ बाकी अदृश्य। तो दो हाथों से तो वो पूजा कर रहे, रावण दिखता था दो हाथों से तो वो पूजा कर रहा है भोले बाबा की, लेकिन बाकी 18 हाथों से क्या कर रहा है? ऐसे आप देखना, मैं अपने पूरे परिवार से कहता हूं, दो हाथ तो आपके दिखते हैं तो उनसे तो आप साधना कर रहे हो, लेकिन बाकी 18 हाथ तो कहीं आपके अदृश्य नहीं है। तो बात कहां से चली थी? ये भक्ति का अपहरण हो गया, सीता मां सीता का अपहरण रावण अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने इसका अपहरण, ऐसे हनुमान रूपी सतगुरु आते हैं।
सद्गुरु रूपी हमारे जीवन में कोई हनुमान आता है और वो हमारी खोई हुई भक्ति भजन साधना फिर से हमें देता है और हम फिर से राम राज्य का अनुभव करते, राम राज्य मतलब जहां राम का राज चलता है, ऐसे अब आप सबों के हृदय में मेरे हरि का राज है, राम राज है। क्यों है कि आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपकी तपस्या, आपकी पूजा, आपकी साधना फिर से आपको मिल गई है। न मिली होती तो आप यहां बैठे क्यों थे? ये सत्संग भी मां सीता का स्वरूप है, भजन कथा कीर्तन आराधना प्रार्थना ये सब का सब मां सीता का ही स्वरूप है, जिसको लोभ मोह रूपी काम क्रोध लोभ मोह रूपी रावण अपहरण करके ले गया, लेकिन सदगुरु हनुमान का रूप हनुमान बन के आए और वो हमारी अपहरित क्या बोलते हैं, अपहरण नहीं अपहित क्या अपहरित किडनैप जिसको कर दिया गया था, वो भक्ति वो भजन वो साधना फिर से हमें लौटा के देते हैं। और जैसे ही आ जाती है हमारे भीतर, यहाँ पे आके ऐसे विराजे जैसे इनको राज, ये तो अपनो राज चलाए गए रहे, प्यारो प्यारो मोहन मन माखन मेरो चलाए गए। ये है हनुमान। अगर आपको महा पथ पे चलना है तो हनुमान जी महाराज के चरणों का अनुकरण कीजिए, जहां आपको दिखे के सामने कौन है, एक असुरी सुरसा है तो खुद को वहां छोटा करके पतली गली से निकल जाओ, अपने घर पहुंचाओगे। और वो हनुमान जी महाराज कहते हाँ तो बड़ी हाँ मैं बड़ा तू बड़ी, वो सदियों तक चलता है और मां सीता मां वहीं बैठी रहती। तो ये है हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल श्री नव कृपा कृपा की निताई गई।